सजना, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना मेरी स्वीकार कीजिएगा। दो सूचनाएं हैं। सर्वप्रथम, अभी सत्संग की समाप्ति के बाद आज 29 तिथि है, अखंड जाप शुरू हो जाएगा, दिन भर चलेगा। साय 7 बजे श्री रामायण जी के पाठ व भजन कीर्तन के साथ इसकी समाप्ति होगी। दूसरी सूचना सर्वजनों विशेषतया उन साधकों के लिए है जो सिर्फ रविवार को ही आते हैं, दैनिक सत्संग में उनका आग्रह नहीं होता। उनके लिए विशेषतया ये सूचना है कि अब रोज जो सत्संग होता है कल से विशेषतया, उसमें पहले श्री अमितवाणी जी का पाठ, उसके बाद भक्ति प्रकाश का पाठ या जो भी कोई पाठ होगा, आजकल भक्ति प्रकाश का पाठ चल रहा है, उसके बाद हम सब ध्यान में बैठते हैं। ध्यान संबंधी दो शब्द उस वक्त आपकी सेवा में कह भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी महाराज की साधना के सारे अंग पूरे हो जाते हैं। एकल से रोज ऐसा हुआ करेगा। जो साधक एक रविवार को छोड़ के, रविवार तो नहीं होगा, बाकी दिन वीकडेज में ये कार्यक्रम जारी रहा करेगा, विशेषतः जिन दिनों में यहाँ होगा। ये थी सूचना आप सबके लिए। जो साधक आना चाहे, कभी उनका ध्यान में बैठने को मन करे तो जरूर वीकडेज में पधारने की कृपा कीजिएगा। वैभव और विवेक की चर्चा चल रही थी। आपको याद होगा दो गरीब मित्र अनाथ बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, लकड़ी बेच के जंगल से लकड़ी काटते हैं, लकड़ी बेच के तो गुजारा करते हैं। दोनों मित्र झोंपड़ी में रहते हैं, पास पास ही दोनों की झोंपड़ियां हैं। आज आपस में बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। विवेक कहता है, वैभव, काश हम भी कुछ पढ़े लिखे होते तो आज जीवन का रंग रूप कुछ और होता। छोड़ यार, क्या बात करता है, ये इस वक्त इस समय को ये बात सोचने का है। अब तो यही सोच, कहीं से लॉटरी निकले, कहीं ढेर से पैसा मिल जाए हमें कहीं से, तो जिंदगी के शेष दिन बड़े आराम से व्यतीत हो जाए, हर सुख सुविधा हमें मिल जाए। आज लकड़ी काटने के लिए गए हुए हैं, एक आवाज से सुनी, चीख से सुनी, कहने लगे कोई खतरे में है, सहायता की जरूरत होगी। लकड़ी का गट्ठर जो इकट्ठा किया हुआ था उसे वहीं फेंका। दोनों के हाथ में कुल्हाड़ी थी, अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेके चले गए हैं। क्या देखते हैं, एक शिकारी दिखने वाला व्यक्ति, शिकारी सा दिखने वाला व्यक्ति, उस पर चीते ने वार किया हुआ है, हमला किया हुआ है, मृत्यु निश्चित है, भाग के गए। इन दोनों ने, वैभव एवं विवेक दोनों मित्रों ने कुल्हाड़ी से चीते पर प्रहार कर दिया, घायल हो गया, भाग गया, जान बच गई। इस शिकारी को उठा के तो वो गांव की तरफ ले जा रहे हैं। क्या देखते हैं, रास्ते में कुछ सैनिक किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, उन्हें पहचाना, ये शिकारी नहीं है, ये राजा है, शिकार के लिए आए हुए हैं, पर वास्तव में राजा है, पुरस्कृत किया जाए, इन्होंने मेरी जान बचाई है, यदि ये ना होते तो मैं आज मर गया होता, प्रजा का भला किया है इन्होंने, मैं प्रजापालक हूं, मेरा ही नहीं सारी प्रजा इनकी ऋणी है, अतएव इन्हें राजदरबार में पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक होने के बाद राजा साहब ने दोनों को दरबार में बुलाया है। वैभव को कुछ नहीं चाहिए, मात्र 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी है। ठीक है, इन्हें तत्काल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। विवेक ने कहा, राजा साहब, बचपन से बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कुछ पढ़ूं, घर के के हालात इस प्रकार के हो गए कि मैं पढ़ लिख ना सका। अभी भी मेरी इच्छा ये खत्म नहीं हुई। यदि मेरी पढ़ाई लिखाई का कुछ प्रबंध हो जाए तो मैं अपने ग्रंथ, सदग्रंथ, अपने शास्त्र पढ़ना चाहता हूं। यदि मेरा प्रबंध हो सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक आचार्य के पास एक गुरुकुल में विवेक को भेज दिया गया है। सारी व्यवस्था राज्य से होगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। 12 वर्ष तक विवेक वहां रहा है, शास्त्रों का अध्ययन किया, चारों वेद पढ़ लिए। क ख से शुरू किया होगा, कह से शुरू करके कहां पहुंचा है। चारों वेदों का देवी अध्ययन कर लिया है, रामायण जी पढ़ ली है, गीता जी पढ़ ली है, महाभारत का अध्ययन कर लिया है, ब्रह्मसूत्र इत्यादि भी पढ़ लिए हैं। मानो मुख्य ग्रंथ जितने भी हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं, वे सारे के सारे विवेक भी पढ़ लिए हैं। बड़ा परंगत विद्वान हो गया है, प्रकांड विद्वान हो गया है, ख्याति दूर दूर तक फैल गई है, विद्वत्ता के कारण नहीं। इन शास्त्रों का सार, सारों का सार ढूंढ लिया है रामनाम, उपासना शुरू करती हुई है। अंतिम वर्षों में रामनाम की उपासना दिन रात की है। रामनाम ने उपासना अपनी करवाई, विवेक ने की, देने योग्य हो गया है, बांटने योग्य हो गया है विवेक। वह विवेक एकमात्र लकड़हारा नहीं रहा, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला विवेक नहीं रहा। ये विवेक ही साधक जनों एक साधक के जीवन में आना चाहिए, इतना है। लेकिन वास्तव में जिसकी चर्चा की जा रही है वह विवेक है। डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी ऑफ द इंटेलेक्ट, बुद्धि की जो विवेक, उसे कहते हैं जो हमें ये बताए सही क्या है, गलत क्या है, करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कहां मुझे सीमा निर्धारित करनी है, कहां तक मुझे जाना है, सन्मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, सत्संगति क्या है, कुसंगति क्या है, जो बोध करवाई उसे विवेक कहा जाता है। हर साधक यदि चाहता है कि उसकी साधना सफल हो तो उसकी बुद्धि विवेक युक्त बुद्धि होनी चाहिए। उसकी बुद्धि को पता होना चाहिए कि यह बुद्धि निर्णय ठीक ले रही है कि नहीं। ये प्लान नहीं सिखाती, घर में रह के आप संयमी जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, तो भाग के आते हो सत्संगों में। चलो कुछ दिन तो संयमी जीवन के व्यतीत होंगे, ये प्लान है, ये घर से भागना है। संयमी जीवन जो जीना सिखाए, मुझे सीमा कहाँ रखनी है, मुझे कितना खाना है, मुझे कितना बोलना है, मुझे किस प्रकार का सोचना है, ये पाप है, ये पुण्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इत्यादि इत्यादि, जो ये चीज सिखाई उसे विवेक कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये विवेक सत्संगति के सिवा और कहीं से नहीं मिलता। कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। विवेक और सत्संग कहां से मिलेगा? परमेश्वर कृपा से मिलेगा। ऐसी तुलसीदास जी की घोषणा है। हमारी सबकी बुद्धि साक्षरों विवेक युक्त बुद्धि होनी चाहिए। इस वक्त बुद्धि किस प्रकार की है? इस वक्त बुद्धि इस प्रकार की है जो दुख देने वाली चीजें हैं उन्हें सुख देने वाली बताती है। और अधिक पैसा इकट्ठा कर, और अधिक एक्सपेंशन कर, और अधिक ये कर वो कर, मानो दुख देने वाली चीजों को सुख देने वाली बुद्धि निर्णय गलत ले रही है। इस वक्त बुद्धि हमारी इस प्रकार की है, मोह ममता के जाल से निकलने ना देने वाली बुद्धि। ऐसी बुद्धि को विवेक युक्त बुद्धि नहीं दुर्बुद्धि कहा जाता है। संसार से निकलने ना देने वाली बुद्धि दुर्बुद्धि। अरे नहीं, संसार में नहीं रहना तो कहां रहना है, यहीं रहना है, ये निर्णय गलत देती है, ये गाइडेंस गलत देती है। ऐसी बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा जाता है बेटा। ये विवेक शून्य बुद्धि है, ये विवेक युक्त बुद्धि नहीं है। विवेक युक्त बुद्धि आपको सन्मार्ग पर ले जाएगी, आपको सत्संगति का रास्ता दिखाएगी, आपको सही निर्णय वाली बुद्धि से युक्त करेगी। इस वक्त दुर्बुद्धि कहां चरम सीमा तक पहुंच गई हुई है। बात तो देवियों सज्जनों वासना से चली थी, अब एक ही वासना से परिचित हो जिसे काम वासना कहा जाता है। नहीं, इस युग में संत महात्मा फरमाते हैं काम वासना तो बहुत पीछे पड़ी हुई है। मानो काम वासना है बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त सबसे बुरी वासना जो है, सबसे बड़ी टॉप पर जो है, वह है धन की वासना। आप परख के देखो, अपने अपने जीवन में देखो इस बात को, इस वक्त सबसे बड़ी वासना जो है शीर्ष पर, टॉप मोस्ट जिसे कहा जाता है, वह है धन की वासना। ये किसी की पूरी नहीं होती। वासना कहते ही उसे हैं जो अमिट है, जो कभी पूरी नहीं होती, जो और आपकी तृष्णा को बढ़ाए वह वासना है। इस वक्त वासना धन की ये कैसे खत्म होगी? विवेक युक्त बुद्धि आपको उपासना की ओर मुड़ेगी तो वासना खत्म होगी, और कोई ढंग नहीं है। बड़े सुंदर शब्द, वासना कैसे मिटेगी? उपासना से। उपासना से क्या होगा? आपको परमात्मा से जोड़ेगी उपासना। उपासना कहा ही उसे जाता है, परमेश्वर के निकट बैठना, समीप बैठना, उपासीन, समीप बैठना, परमात्मा के आश्रित होना, परमात्मा के पास बैठना, इसे ही उपासना कहा जाता है। सत्यजनों, इस वक्त ये वासना हमारे अंदर चरम सीमा पर है। क्या खेल खेल रही है ये वासना? धन की वासना, किसी प्रकार की, अनेक प्रकार की, प्रशंसा की वासना, यशमान की वासना, कुर्सी की वासना, ये सब वासनाएं हैं। ये खत्म भी नहीं होती, अपने प्रति खत्म नहीं होती, फिर अपनों के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, उसे ये चाहिए, उसे ये चाहिए, मन के खोटे खेल। मैं अपनी पुत्री को रोता नहीं देख सकता, मैं अपनी पुत्री को दुखी नहीं देख सकता। कारण क्या है? उसके घर संतान नहीं है। मांग तो ये है, ये फजूल की बातें हैं, मन के खोटे खेल हैं। ये आदमी समझता नहीं है, क्यों? विवेक शून्य है, उसका विवेक जागृत नहीं हुआ, साधन ने उस पर रंग नहीं चढ़ाया। मानो साधना शून्य कहिएगा, उसने अपनी साधना से कोई फायदा नहीं लिया, राम नाम जप से उसने कोई फायदा नहीं लिया, ध्यान में कभी बैठे नहीं है, तो फिर ये बातें कहां से आएंगी? इस वक्त वासना की चरम सीमा देखिएगा, क्या कहती है ये वासना, क्या कहती है ये दुर्बुद्धि? इंसान के अंदर इतनी भौतिक कामनाएं भर दे, क्या इंस्ट्रक्शंस है माया की? क्या इंस्ट्रक्शंस है माया की? तनिक ध्यान से सुनो। माया कहती है, दी वासना, तू मेरी चेली है, मैं तेरे माध्यम से काम करती हूं, तू सारे संसार के जितने जीव हैं उन सब के अंदर ये बात भर दे, इतनी भौतिक कामनाएं भर दे कि एक के बाद, पूर्ति के बाद दूसरी कामना जाग जाए, दूसरी के बाद तीसरी जग जाए, ये कभी खत्म ना हो, और उनके अंदर कभी कभी भगवत प्राप्ति की कामना जगने नहीं देनी। ये वासना का खेल है, ये माया का खेल है। आप समझ गए हो ना क्या खेल खेल रही है ये माया? वासना के माध्यम से, तृष्णा के माध्यम से क्या खेल खेल रही है इस इंसान के अंदर, इस साधक के अंदर? इतनी कामनाएं भर दे, एक के बाद एक ही पूर्ति करता रहे लेकिन कभी पूरी ना हो, इतनी भर दे, इतनी भर दे कि एक जीवन अनेक जीवन इनकी पूर्ति में लगे रहें, तब भी इनकी पूर्ति ना हो, और इनके अंदर भगवत प्राप्ति की जो उत्कंठा है, जो असली कामना कही जाती है, जो लक्ष्य पूर्ति वाली कामना है, वह कभी जागृत ना हो। ये वासना का खेल है, कैसे मरेगी? विवेक युक्त बुद्धि से उपासना का मार्ग आप अपनाओगे तो विवेक घर लौटा है। विवेक युक्त विवेक, वह लकड़हारा विवेक नहीं रहा हुआ, इस वक्त साक्षात मूर्तिमान विवेक हुआ हुआ है। वह अपने मित्र के पास आता है, अपने घर लौटता है, अपनी कुटिया को देखता है, वैभव की कुटिया को देखता है। वैभव तो इतना धन लेके आया था, क्या हुआ? इस वक्त वैभव की सेहत इतनी कमजोर है कि वह पहचाना नहीं जा सकता, जहां तक कि वैभव ने अपनी कमजोरी के कारण विवेक को नहीं पहचाना। विवेक तो हट्टा कट्टा बहुत खिला हुआ व्यक्ति, सब कुछ ठीक है उसका, वह तो असली मानव बन गया है, वह इस प्रकार का नहीं रखा जैसा वैभव, क्या हुआ है तुम्हें? विवेक ने पूछा, तू तो ये मेरे सामने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पता नहीं कितनी होती हैं, कितना पैसा होता होगा, उस वक्त इतना पैसा लेके आया था, लेकिन अभी भी तू झुग झोंपड़ी में, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ तेरा धन रास्ते में ही किसी ने लूट लिया? नहीं विवेक, मेरे धन को नहीं लूटा, धन ने मुझे लूट लिया। कितने सुंदर शब्द हैं, धन ने मुझे लूट लिया। कैसे लूटा? धन प्राप्त होते ही वैभव सीरीज बताता है, क्रम बताता है, कहता है धन के आते विवेक मेरे सारे के सारे कुसंस्कार जागृत हो गए, मैं उनकी पकड़ में आ गया, कुसंगति मुझे मिल गई, मानो जो चीजें मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं करी थी सब दबी हुई थी सब उभर आई। कुसंग क्या करता है? दबे हुए सारे के सारे कुसंस्कार उनको उभार के रख देता है। सत्संग क्या करता है? इनको दबा देता है और आपके सुसंस्कारों को उभार देता है। ये कहां पड़ गया? ये कुसंग में पड़ गया। किसके प्रताप से? अमीरी के प्रताप से, पैसे के प्रताप से। अर्थ साधक जनों अनर्थ ना करे ये कभी हो नहीं सकता। सो डिक्लेयर द स्क्रिप्चर्स। कोई विरला ही होगा जो अर्थ के अनर्थ से बच जाएगा। यदि सत्संगति से जुड़ा हुआ है तो बचा रहेगा, अन्यथा कोई और साधन नहीं है। मुझे धन ने लूट लिया, कुसंगति में पड़ गया। वैभव तेरी असली संपदा लूट गई। असली संपदा पैसा नहीं, असली संपदा है जीवन। तूने अपने जीवन का दुरुपयोग करके तो अपनी असली संपदा को लुटा दिया। अभी भी कुछ नहीं गया मित्र, जितनी शेष है उसे बचा ले। नाम की कमाई कर, मैं तुझे ऐसा धन देता हूं जो तुम्हें लूटेगा नहीं, जो सदा तेरे पास रहेगा, तेरी अपनी कमाई होगी, परमात्मा के दरबार में तेरे साथ जाएगी। यहां रहने वाली कमाई, लूट जाने वाली कमाई नहीं, तुम्हें लूटने वाली कमाई, जीवन रूपी संपदा को लूट जाने वाली, बर्बाद करने वाली कमाई मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुम्हें असली कमाई आज देता हूं, राम नाम का दान दिया। वैभव ने भी राम राम जपना शुरू कर दिया है। तो साधक जनों, आज की चर्चा तो यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, आगे इसी चर्चा को और जारी रखेंगे। तो आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। कोटि-कोटि प्रणाम आप सबको। अभी जब शुरू होगा मेहरबानी करके ध्यान से सुनो, जब शुरू होगा जो साधक जब के लिए बैठना चाहते हैं उन्हें बैठने दीजिएगा, बैठें आराम से बैठें। जो उठ के जाना चाहते हैं बड़े आराम से उठें, ताकि जो बैठे हुए हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा या डिस्टर्बेंस ना हो। अपना अर्ज करूं, ये आज का जाप दिन भर चलेगा, इसकी समाप्ति शाम 7 बजे होगी। रामायण जी के पाठ के साथ भजन कीर्तन भी होता है, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप जाप में भाग ले सकते हैं, पधार सकते हैं किसी भी समय। धन्यवाद।